चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को संस्कृत कक्षा अष्टाध्याय की भूमिका पाठ में स्वागत है। हमारा क्या पाठ चल रहा था जी? 16वां पाठ चल रहा था ना?
कर्ता का पाठ चल रहा था आचार्य जी।
उसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया था?
1451 पढ़ा दिया था आचार्य जी।
हाँ जी,
1451 आचार्य जी जो है अकथितम च।
अकथितम च, अच्छा द्विकर्मक वाला मैंने पढ़ा दिया था। इंडिया भी लगा लेता हूँ। कथितम से हमने पढ़ा दिया था, ठीक करें।
उस पर डिस्कशन चल रहा था, मेरे ख्याल खत्म कर दिया था आपने।
हाँ, द्विकर्मक है ये है, बता दिया होगा। चलिए, नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए निकाल लीजिए, क्या बोले हैं? 1451 हो गया था ना
जी आचार्य जी?
इसका मतलब है कि कर्म संज्ञा, कर्म किसे कहते हैं, ये चल रहा था। कर्तृरूप सतम कर्म पढ़ा दिया था, तथा युक्तम चानिप्सितम, जो अनिप्सित है उस की भी कर्म संज्ञा होती है
जी,
वो भी पढ़ा दिया था। अकस्तम च, अपद अनादिकारक के द्वारा जो अकथित है, अनुक्त है, उस कारक की भी कर्म संज्ञा होती है, ये बता दिया था
जी जी।
अब आगे है 52 है, वह है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणामणि कर्ता सौलौ। ये है, ये 1452 नंबर सूत्र है, 1452, पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 52 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए सभी, सभी जो है निकाल लीजिए, निकाल लीजिए सभी
जी आचार्य जी।
हाँ, और चलिए प्रतीक जी आपने निकाल लिया, द्रोण जी निकाल लिए।
हाँ,
अब चलिए जी, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम, तो अकारांत पुमलिंग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का, अकारांत पुमलिंग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म क शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये अंतिम में अकर्मक है। तो म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए जी, सुमन जी म्यूट कर लीजिए। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का, अकारांत पुमलिंग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगे है अणि, अणि है, अणि इकारांत पुमलिंग अणि शब्द नहीं, ये जो है प्रथमा सप्तमी विभक्ति है, तो मन लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है। यहाँ पर अणी है, इकारांत पुमलिंग अणी, और इसके आगे जो सप्तमी नी आई है और उसका सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण से या डाड्या जाल से जो है उसका लोप हो गया है, नी का सुप का लुक हो गया है, लुक आदेश हो गया है, तो लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है अणी। और आगे है कर्ता, ऋकारांत पुमलिंग कर्तृ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन सह सर्वनाम पुमलिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ऋणव इकारांत पुमलिंग ऋणी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया
जी? अच्छा जी,
और भी विद्यार्थी को समझ में आया?
आ गया आचार्य जी।
हाँ, तो वो तो ठीक है, वो प्रतीक जी, द्रोण जी, सुमन जी, सबको समझ में आया? मन अभी तक आप सूत्र भी नहीं निकाले हैं, आश्चर्य बात है। मैं जब बोला कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 52 नंबर सूत्र है, तो भी आप सूत्र भी नहीं निकाले? एक 452 है, मैंने बताया गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का कर्म क, ये पुमलिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है कारांत, और अनिलुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, और कर्ता प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, सह सर्वनाम पुमलिंग तत् प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, अणव इकारांत पुमलिंग नि सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, ये बताया था। म्यूट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। आगे अब समास है, क्या चीज? अणव सप्तमी एक वचन है, ऋणी का, जैसे हरि का हरव बनता है, ऋणी का अणव, और अणि लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, सो ध्यान रखेंगे। समास पहले गति बुद्धि और प्रत्यवसानार्थ, इसमें गतिश्च बुद्धिश्च और प्रत्यवसानम च, इति गति बुद्धि प्रत्यवसानी, फिर मैं बोल रहा हूं, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च, इति गति बुद्धि प्रत्यवसानी, ये इतने तर योग द्वंद हुआ। और आगे है हाँ, तो बस सब नप जलम जले जलानी नहीं होगा, जब तीन है गति है बुद्धि है प्रत्यवसान है, तो उसको वचन नहीं हो जाएगा वसानी, तो गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च, इति गति बुद्धि प्रत्यवसानी, जलम जले जलानी, भोजनम भोजने भोजनानी। अब उस गति बुद्धि प्रत्यवसानी का अर्थ के साथ समास है, गति बुद्धि प्रत्यवसानी अर्थाह येषाम, गति बुद्धि प्रत्यवसानी अर्थाह येषाम, ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाह, फिर मैं बोल रहा हूं, गति बुद्धि प्रत्यवसानी अर्थाह येषाम, ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाह, माने गति बुद्धि और प्रत्यवसान अर्थ है जिनके, ये अर्थ हुआ, गति बुद्धि और प्रत्यवसान अर्थ है जिन धातुओं के, उन धातु को कहेंगे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ। तो और साथ साथ आगे है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ हो गया, अब आगे है शब्द कर्म। यहां तक बहुव्रीहि समास था, गति बुद्धि प्रत्यवसानानी अर्था येषाम ते गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्था, ये इतरे तर ये द्वंद समास मन इतरे तर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया, इतरे तर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया ये। हाँ, और आगे है शब्द कर्म, तो शब्द कर्म यस्य, शब्द कर्म यस्य स शब्द कर्मा, शब्द कर्म है जिसका, जिसका कर्म शब्द है, तो शब्द कर्म यस्य स शब्द कर्मा, ये भी बहुव्रीहि समास है शब्द कर्मा। और अकर्मक भी है, तो न विद्यते कर्म यस्य सह अकर्म कह, मैंने न विद्यते कर्म यस्य सह अकर्म कह, जिसका कर्म विद्यमान नहीं है जिस धातु का वो अकर्मक हो गया। और शब्द कर्म यस्य वह शब्द मन जिसका कर्म शब्द है वो शब्द कर्मा हो गया। ये सब सभी धातु का ही विशेषण है। तो अब जो है समास हो गया, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः च शब्द कर्मा च अकर्मकश्च इति, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का कर्मा कर्म का तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का कर्मणाम। फिर मैं बोल रहा हूं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाश्च शब्द कर्मा च अकर्मकाश्च या अकर्मकश्च, यस्य अकर्मकश्च इति, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का कर्मकाः, तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मा कर्मकाणाम, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। तो इतरेतर योग द्वंद के अंदर में बहुत सारे समास हो गए, इतरेतर योग द्वंद के अंदर बहुत सारे समास हो गए। सबसे पहले इतरेतर योग द्वंद गर्भब्रीहि गर्भ बहुब्रीहि, फिर जो है बहुब्रीहि गर्भ, और फिर बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास। माने गति बुद्धि प्रतिवसानार्थ ये इसमें जो है इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्रीहि है, फिर शब्द कर्मा जो है इसमें भी जो है बहुब्रीहि है, और फिर जो है अकर्मक में भी बहुब्रीहि है, तो तीनों बहुव्रीहि हो गया। तो इतने तर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ बहुव्रीहि गर्भ बहुव्रीहि इतने तर योग द्वंद समास, समझ गए जी? सभी को समझ में आया समास?
आ गया चाहिए।
हाँ। प्रतीक जी आप समझे?
हाँ।
द्रोण जी आप समझे?
हाँ।
और आप समझे जी?
जी समझ गया।
बहुवचन है ना, गति बुद्धि प्रतिवसान जब तीन हो गया, गति बुद्धि प्रतिवसान अर्थ है जिनके, तो वसानार्थाः होगा ना जी, गति बुद्धि प्रतिवसानार्थाः ये होगा ना, च और शब्द कर्मा च और अकर्मकश्च, जो एक एक वचन है, शब्द कर्मा एक वचन है, अकर्म का एक वचन, शब्द कर्मा च अकर्म कश्च इति, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, ये है। इस पर और आप विचारिएगा फिर बाद में, बहुत ही हमने पूरा बता दिया। आइए जी, अब अणि में भी समास है, न अणिह अणिह तस्मिन अणि, सप्तमी के तस्मिन अणि, आगे नी का लोप हो गया है, नाणी अणि तस्मिन अणि लुप्त सप्तम में निर्देश है, नहीं तत्पुर समास है। नाणी अणि तस्मिन अणि माने आगे जो है लोप हो गया है, सप्तमी विभक्ति गी का सुपाम सु लुक पुरुष वर्णच है अडड्या, तो सुपों का जो है लुक हो गया यहाँ पर। तो अणि बस ये है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, कार्के की कार्के का तो अधिकार चल ही रहा है, कार्के का अधिकार वो जो 1423 है उससे तो चल ही रहा है कार्के का, और कर्म का प्रकरण है, प्रसंग है कर्तु रिक्त सत्वम कर्म, इसलिए कर्म की अनुवृत्ति आ रही है, तो कार्के और कर्म की अनुवृत्ति आई। तो क्या अर्थ हो गया जी, है कि अब आपको हमने पहले सिखाया हुआ है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदं प्रत्येकमपि संबध्यते, कि द्वंद समास के प्रारंभ में या द्वंद समास के अंत में जो भी पद सुनाई देगा उस पद का द्वंद समास के प्रत्येक पद के साथ संबंध होगा। तो गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ, अर्थ गति बुद्धि प्रत्यवसान में जो है द्वंद समास था, मैंने बताया समास के आधार उसके अंत में अर्थ है, तो अर्थ का संबंध गति के साथ भी होगा, बुद्धि के साथ भी होगा, प्रत्यवसान के भी साथ होगा। तो गति का अर्थ हुआ गत्यर्थ, बुद्धि का अर्थ हुआ बुद्ध्यर्थ, प्रत्यवसान का अर्थ हुआ प्रत्यवसानार्थ, समझ गए। तो गत्यर्थ जो गत्यर्थ धातु, बुद्ध्यर्थ धातु, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि का मतलब क्या है जी, ज्ञान। तो गत्यर्थ धातु माने गति अर्थ वाले जो धातु है, जैसे गम धातु हो गया गति अर्थ वाले, या प्रापणे या हो गया गति अर्थ वाले, णीय प्रापणे माने या णीय, णीय हो गया गति अर्थ वाले, माने गति अर्थ वाले जैसे अकी गतौ हो गया। तो गति अर्थ वाले जो भी धातु होगा, गति अर्थ वाले जो भी धातु होगा, गत्यर्थक जो भी धातु होगा, उस गत्यर्थक धातुओं के, क्योंकि गत्य गति बुद्धि प्रतिभासनाथ शब्द कर्म का कर्मणाम जो है षष्ठी बहुवचन है, इसलिए षष्ठी का अर्थ होता है के, काके की जो चिन्ह होता है, तो गत्यर्थक धातुओं के ऐसा अर्थ हो गया, बुद्ध्यर्थक धातुओं के और प्रत्यवसानार्थक धातुओं के। प्रत्यवसान कहते हैं भोजन, प्रत्यवसान कहते हैं भोजन को, प्रत्यवसान का मतलब है भोजन। तो भोजनार्थक जो धातु हो गया, तो गत्यर्थ धातु, बुद्ध्यर्थ धातु और प्रत्यवसानार्थ धातु माने भोजनार्थक धातु, ये हो गया। तो भोजनार्थक धातुओं के, और आगे है शब्द कर्मा, शब्द कर्मा, शब्द कर्म है जिसके, जिसके माने जिसका कर्म जो है वह शब्द है, उसको शब्द कर्मा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है कि शब्द कर्मा का उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे बाल कह वेदम अधीते, बाल कह वेदम अधीते, यहां पर जो है बालक जो है वेद को पढ़ता है, बालक जो है वेद को पढ़ता है, तो यहां पर जो पढ़ना जो क्रिया है वेद को जो पढ़ता है, तो पढ़ना एक जो है, पढ़ना जिस चीज को पढ़ रहा है वो तो शब्द ही है, तो शब्द कर्म है जिसके। अध्यापयति जैसे वेद श्रमी स्वशिष्यान वेदम अध्यापयति, तो वेद श्रमी अपने शिष्यों को वेद पढ़ाता है, या स्व शिष्यान व्याकरणम अध्यापयति, व्याकरण को पढ़ाता है। तो जैसे पढ़ाना हो गया, पढ़ना हो गया, तो पढ़ना पढ़ाना ये तो ये शब्द का मतलब हुआ उपदेश, शब्द का मतलब हुआ उपदेश। शब्द जो भी शब्द होता है वह उपदेश रूप में, पढ़ाने अर्थ में इस रूप में होता है। तो यहाँ पर शब्द कर्म है जिसके, जिसका कर्म शब्द होगा, तो यहाँ पर जो है अधीते मानव कह देवेदम, बालक जो है वेद को पढ़ता है। तो यहाँ पर वेद क्या है जी, वेद जो ज्ञान है, वेद जो है वह तो शब्द ही है। अध्यापयति मानवकम वेदम, देवदत्त मानवकम वेदम अध्यापयति, देवदत्त मानव को जो है वेद पढ़ाता है। तो यहाँ पर वेद भी तो शब्द ही है। तो यहाँ पर अधिपूर्वक इन धातु को, पठ धातु का, इन सब का जो कर्म है वह शब्द ही है, शब्द है। कोई भी चीज पढ़ाएगा तो वह शब्द ही होगा, वह उसी रूप में होगा। तो इसीलिए जो भी शब्द कर्मा जो धातु है, शब्द कर्म वाले धातुओं के, शब्द कर्म वाले धातुओं के और अकर्मक जो धातु है, अकर्मक धातुओं के, ऐसा अर्थ हुआ। फिर मैं बोल रहा हूँ, गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थक धातु, शब्द कर्मा धातु, शब्द कर्म वाली धातु और अकर्मक धातु, वो के अणि, अणि णि माने णि जो है प्रत्यय, नीच निच जो प्रत्यय है, निच निच जो प्रत्यय है उस निच का णि लिया है। तो निच प्रेरणा अर्थ में होता है, तो निच जो है प्रेरणा अर्थ में होता है, निच प्रेरणा अर्थ में होता है। तो अणि माने अन्यंत अवस्था में, माने गत्यर्थक धातुओं के प्रत्यवसाना, बुद्ध्यर्थक धातुओं के और प्रत्यवसानार्थक धातुओं के और शब्द कर्म वाले धातुओं के और अकर्मक धातुओं के जो अन्यंत अवस्था में करता है, अन्यंत अवस्था में करता है वह स, माने वह करता न्यन्नौ, न्यंत अवस्थायाम कर्म भवती, न्यंत अवस्था में कर्म होता है। जैसे मैंने बताया कि अधीते मानव कह वेदम, यहाँ पर अधीते जो है अन्यंत अवस्था में, न्यंत नहीं है, निप्रत्यांत नहीं है अधीते। तो बालक जो है वेद को पढ़ता है, तो बालक वेद को पढ़ता है तो यहाँ पर अन्यंत अवस्था में, माने ये शब्द कर्म वाले जो धातु है, शब्द कर्म वाले जो धातु है वो शब्द कर्म वाले धातुओं के अन्यंत अवस्था में करता है मानवक, माने बालक। उस कर्ता का, कर्ता का न्यंत अवस्था में, जब अधीते निजंत में अध्यापयति इस रूप में प्रयोग होगा तो वह कर्ता कर्म बन जाता है। इसलिए अध्यापयति मानव कम वेदम, यहाँ पर जो अन्यंत अवस्था में करता था मानव कह वेदम अधीते, तम तम मानव कम यजदत्त वेदम अध्यापयति। तो वह जो मानव का जो करता था वह न्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। समझ में आया जी? और फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये तो हो गया शब्द कर्मा का। ऐसे ही जैसे गत्यर्थक धातु ले लीजिए, गत्यर्थक, जैसे गत्यर्थक में अन्यंत अवस्था में देख लीजिए, जिसमें नी नहीं है, मतलब निच प्रत्यांत जो नहीं है। जैसे बालक ग्रामम गच्छति, बालक ग्रामम गच्छति, बालक गांव जाता है। तो यहाँ पर गमन क्रिया का कर्ता जो है बालक है, अब जो है उस जाते हुए बालक को प्रेरणा दे रहा है कोई कि भाई जाओ, तो यहाँ पर जो है जो माँ बालक जो करता था वो न्यंत का जब गच्छति के स्थान पर गमयति जब हो जाएगा, न्यंत का प्रयोग होगा तो वह बालक बालकम बन जाएगा, तो जाएगा बालकम ग्रामम गमयति, माने बालकम ग्रामम अनंतः स्व बालिकाम ग्रामम गमयति। अनंत जो है अपनी बेटी को गांव भेजता है, गमयति माने होता है भेजता है। तो यहां पर जो पहले बालिका जो थी वह गांव जा रही थी, उनके अंदर मन में भावना हुई कि मैं गांव जाऊं, मैं अपने हैदराबाद जाऊं। अब उसको उनके पिताजी अनंत जी जो है प्रेरणा दे रहे हैं, तो गमयति वह भेज रहा है, इसलिए बालिका ग्रामम गच्छति। और वहां पर जो है कि अनंतः बालिकाम ग्रामम गमयति, बालिका जो अनंत अवस्था में कर्ता जो था वह कर्ता रूप में थी, बालिका काल बालिका शब्द कर्ता रूप में था, वो अनंत अवस्था में गमयति का प्रयोग किए तो बालिकाम कर्म हो गया, इसलिए कह रहे हैं एक गति का उदाहरण हो गया। ऐसे ही या जैसे याति है, या प्रापने या धातु हो गया, तो देवदत्त ग्रामम याति और हो जाएगा देवदत्तम ग्रामम यापयति, देवदत्त को गांव भेजता है, ये हो गया। ऐसे बुद्धिअर्थक धातु है, बुद्धि अर्थ वाले जो धातु है बुद्धिअर्थक धातु, तो बुद्धिअर्थक में हो गया जैसे बालकः धर्मम बुध्यते, बालकः धर्मम बुध्यते, बालक जो है धर्म को जानता है, धर्म का बोध करता है, बुध्यते माने बोध करता है, बालकः धर्मम बुध्यते। अब जो है बोध कर रहा है जो बालक, जो जान रहा है धर्म को जानता है, तो जानते हुए बालक को वो जनाता है, तो इस हो जाएगा बालकम धर्मम बोधयति। तो यहाँ पर बालक जो है कर्म जो करता था अन्यंत अवस्था में, नियंत अवस्था में बोधयति नियंत है, उस अवस्था में वह बालक जो है कर्म हो गया, इसलिए बालकम धर्मम बोधयति, बालक को धर्म का बोध कराता है। ऐसे ही जैसे विद धातु है, बुद्धिअर्थक है, तो देवदत्त धर्मम व्यक्ति, देवदत्त धर्म को जानता है। अब जो है जो धर्म को जानता है उसको धर्म का बोध करे, इसलिए वेदयति देवदत्तम धर्मम, माने देवदत्त को धर्म का बोध कराता है, ये बुद्धिअर्थक धातु हो गया। ऐसे ही प्रत्यवसानार्थक धातु, भोजनार्थक, जैसे देवदत्त ओदनम भुंकते, देवदत्त चावल खाता है, देवदत्त ओदनम भुंगते, देवदत्त चावल खाता है, तो उस चावल खाते हुए देवदत्त को प्रेरणा देता है कोई, तो या खिलाता है, उनके अंदर इच्छा हुई और खिला रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा देवदत्तम ओदनम भोजयति, देवदत्तम ओदनम भोजयति यज्ञदत्त, यज्ञदत्त देवदत्त को भोजन खिलाता है, ये हो गया, माने चावल खिलाता है, रोटिकाम भोजयति। ऐसे अश धातु जैसे भोजने, तो देवदत्त रोटिकाम अशनाति, देवदत्त जो है रोटी खाता है, और यज्ञदत्त देवदत्तम रोटिकाम आशयति, देवदत्त यज्ञदत्त देवदत्त को जो है रोटी खिलाता है। और शब्द कर्मा का आपने उदाहरण दे ही दिया था कि अधीते देवदत्त वेदम, और देवदत्त जो है वेद को पढ़ता है, अध्यापयति देवदत्तम वेदम, और देवदत्त को जो है वेद पढ़ाता है, इस तरीके से। अकर्मक धातु जो है जैसे आस्ते देवदत्त, देवदत्त बैठता है, देवदत्त बैठता है, क्योंकि बैठना धातु अकर्मक है, बैठना क्रियाकर्मक है, तो आस्ते देवदत्त, तो आस्ते देवदत्त, देवदत्त जो है बैठता है, तो आसयति देवदत्तम, देवदत्त को बिठाता है। ये यहाँ पर अनंत अवस्था जो आस धातु आस उपवेश ने उसका जो कर्ता देवदत्त है, नियंत अवस्था में वह कर्म हो जाता है, इसलिए आसयति देवदत्तम। तो सभी अकर्मक धातु नियंत अवस्था में कर्म हो जाते हैं, सभी अकर्मक धातु नियंत अवस्था में कर्म हो गए। अब ऐसे ही देवदत्त शेते, देवदत्त सोता है, और शायति देवदत्तम, देवदत्त को सुलाता है, तो शायति देवदत्तम, नियंत अवस्था में वह कर्म बन गया। तो ये इसलिए करेंगे गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक और शब्द कर्म और अकर्मक धातुओं के अन्यंत अवस्था में जो करता उस वह नियंत अवस्था में कर्म हो जाता है। तो इसको संस्कृत में भी कहना चाहेंगे तो गत्यर्थानाम धातुनाम बुद्ध्यर्थानाम धातुनाम प्रत्यवसानार्थानाम धातुनाम शब्द कर्मकाणाम धातुनाम अकर्मकाणाम च धातुनाम अनंतावस्थायाम यह कर्ता, सह यह का ध्यान करेंगे कि सह यहाँ पर है तो यह तत्कालिक संबंध होता है, तो अनंतावस्थायाम यह कर्ता, सह अनंतावस्थायाम कर्म संजको भवती, वह अनंत अवस्था में कर्म संजक होता है, माने गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म वाला अकर्मक धातुओं के नियंत अवस्था में अनियंत अवस्था में जो करता वो अनियंत अवस्था में कर्म हो जाता है, तो ये कर्म हो गया। सभी को समझ में आया जी? ये
आ गया आचार्य जी।
अनंत जी समझ गए, द्रोण जी समझ गए, सभी को समझ में आ गया?
हाँ जी।
चलिए प्रतीक जी आप समझे?
हाँ।
सुमन जी आपको समझ में आया?
शब्द कर्म, शब्द कर्म अनियंत क्या कर रहे हैं, अनियंत क्या कर रहे हैं?
देखो नीच जैसे पठती, पठती जिसमें नीच नहीं होता है वो अनियंत हो गया, पठती ये हो गया अनियंत, और पाठयती हो गया नियंत। मैंने पठ धातु से जब नीच प्रत्यय करेंगे तो पाठी बनेगा, और पाठी से फिर पाठयति बनता है। अधिपूर्वक इंग धातु से नीच करेंगे तो अध्यापी बनेगा, और अध्यापी से फिर इंग ला करके अध्यापयति बनता है। ऐसे ही अस धातु से जब नीच करेंगे, आस धातु से जब नीच करेंगे तो आसयत आसी बनेगा, और आसी से तिंग आकर के आसयति बनता है। तो शिंग धातु है वह उस शिंग धातु से क्या बोलते हैं नीच करेंगे तो शाई बनेगा, और शाई का फिर शायति बनता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो भी आपने अभी तक पठती गच्छती हंसती इत्यादि जो आपने पढ़ा ये सभी अन्यंत अवस्था में, उसमें नीच प्रत्यय नहीं है। नियंत का मतलब हुआ नी अंत में है जिसके, नी अंतावयव है जिसके, जिसका जैसे यहाँ पर हमने कहा शाई ये नया धातु बन गया, तो ये नी अंतावयव है शाई के। अध्यापी ई जो है ई आ गया तो मैंने नया धातु बन गया, तो नी अंतावयव जिसका होगा, नी प्रत्यय अंतावयव जिसका होगा उसको कहते हैं नियंत, और जिस धातु का नी अंतावयव नहीं होगा हो गया अन्यंत। तो यहाँ पर अजीते पठती इसमें नी अंत में है ही नहीं, इसलिए पठ है पाठी नहीं है, अधिपूर्वक इन है अधि है, अध्यापी नहीं है, तो इसलिए अन्यंत हो गया। जो आपने समान रूप से शब्द को आप धातु रूप का आपने रूप चलाया है, गच्छती गच्छता गच्छती हंसती हंसता हंसती पठती पठती, ये सब अन्यंत हो गया। समझ गया जी? मूल जो धातु है, सभी जो मूल धातु है वह सब अन्यंत है। क्या मैं बोला? भू पठ गम हस इत्यादि जितने भी सब अन्यंत है। सब क्या है जी?
नियंत
अन्यंत, और उससे नी प्रत्यय लाएंगे, और नी प्रत्यय ला करके नया धातु जो बन गया हो गया अन्यंत। सुमन जी समझ में आ रहा है? मने नी प्रत्यय है, निच प्रत्यय है, निच। तो जिस धातु से आप नी प्रत्यय लाए वो निच बन गए, जैसे भू धातु है, भू से आप मूल धातु अन्यंत है, भू से निच लाए तो भावी बन गया और भावी से भावयति बन गया। तो भू धातु स्वयं अपने आप में अन्यंत है, निच ला करके न्यंत बन गया। भू निच का ई बचता है, भू ई और वृद्धि हो जाती है, भू हो जाता है, भू को ये चाहे लग गया भावी बन गया, तो भावी हो गया अन्यंत। एध वृद्धो, एध वृद्धो जैसे है तो एध धातु, एध जो है अन्यंत है, एध से जब आपने निच किया तो एध ही तो एधयति बन जाता है। तो ये समझ में आया जी? हाँ, आगे चले
जी। जी
तो अब आप आगे हैं, रिक्रोर अन्यत्र स्याम, रिक्रोर अन्यत्र स्याम, रिक्रोह रिक्रोह रिकारांत पुमलिंग रिक्री शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो अन्य तरह से अव्यय हो गया, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय सकते हैं, सप्तमी की तरह दिख रहा है परंतु ये अव्यय है। तो रिक्रोह रिकारांत पुमलिंग रिक्री शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। समास हो गया ऋश्च कृश्च, तो रिक्रव तयो रिक्रोह, ये इतने योग द्वंद हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति जो है अणि की आ रही है, कर्ता की आ रही है, सर्णों की आ रही है, कर्म और कार्य की आ रही है। तो अर्थ वही हो गया, ह्री और क्री धातुओं, ह्री और क्री धातुओं के अन्यंत अवस्था में जो कर्ता, वह अन्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है, बस ये है। जैसे ऊपर अर्थ था उसमें गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रतिवसनार्थक शब्द कर्म और अकर्मक, इनका था, यहाँ पर केवल ह्री और क्री धातु दिया, बस दो अर्थ दिया। ह्री धातु और क्री धातु के ऊपर में इसका जिक्र नहीं है, तो ह्री और क्री धातु के जो कर्ता, ह्री और क्री धातु के जो कर्ता, वो नियंत अवस्था में कर्म हो जाता है, अन्यत्र स्याम विकल्प से होता है, एक बार होता है और एक बार नहीं होता है, इस चीज को बता रहा है। जैसे देवदत्त भारम हरति, उदाहरण है देवदत्त भारम हरति, तो देवदत्त भार को हरण करता है, मतलब भार को उठाता है, हरति का मतलब हो गया यहाँ पर हरण करता है, मतलब भार को, कोई देवदत्त कोई भी आप है और कोई भार भारी चीज उठा रहे हैं, तो देवदत्त माने प्रतीक भारम हरति, प्रतीक जो है भार को उठाता है। अब जो है, अब यहाँ पर हारयति, हारयति प्रतीकम भारम, हारयति प्रतीकम भारम माने प्रतीक से भार उठवाता है, प्रतीक से भार उठवाता है। तो यहां पर एक बार कर्म हो गया तो प्रतीकम में द्वितीय व्यक्ति हो गई, तो हारयति प्रतीकम भारम, और जब जिस पक्ष में कर्म नहीं होगा तो प्रतीक से भार उठवाता है, देवदत्त जो है प्रतीक से भार उठवाता है, तो भार उठवाने में वह क्या हो गया। अब यहां पर कर्तरीकरण स्थितियां, जब इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई तो कर्तरीकरण स्थितियां जो है, इससे यहां पर कि प्रतीक से भार उठवाता है, तो यहाँ पर करण हो गया, ये भार उठवाने में, भार उठवाने में साधन कौन है, प्रतीक है ना जी, तो करण हो जाएगा और करण में तृतीय हो जाएगी कि हारयति भारम प्रतीकेन देवदत्तः प्रतीकेन भारम हारयति। देवदत्त जो है प्रतीक से भार उठवाता है। ऐसे ही क्री का ले लीजिए, देवदत्तः कटम करोति। देवदत्त जो है चट कुछ पूछना है तो बोलिए।
यहाँ पर देवदत्त भारम हरति
हाँ
हारयति हारयति देवदत्तम भारम
भारम। एक बार तो ये हो गया कि देव हारयति मैंने उठवाता है देवदत्त से भार। देवदत्त से भार उठवाता है।
हारयति देवदत्तेन भारम
दोनों हो जाएगा नहीं? हारयति हारयति देवदत्तम भारम भी हो जाएगा और हारयति भारम देवदत्तेन हो जाएगा। जब एक बार कर्म संज्ञा हो गई तो कर्म हो गए तो द्वितीय व्यक्ति हो गई, और जब कर्म नहीं हुआ तो क्या करण है ना जी। यजदत्त देवदत्त से भार उठवाता है तो यजदत्त देवदत्त से भार उठवाया तो ये भार उठवाने में सहायक कौन है? देवदत्त। इसलिए करण हो गया, इसलिए करण में तृतीय व्यक्ति हो गई। समझ गया जी। री और क्री धातुओं के जो अनियंत अवस्था में करता है, नियंत अवस्था में वह कर्म बन जाता है एक बार, और जब नियंत अवस्था में कर्म नहीं हुआ तो फिर वह करण हो गया। कर्म तो स्वतः अपने आप ही प्राप्त है ही। तो मैं बता रहा था कि आगे करोति कटम देवदत्त, देवदत्त चटाई को बनाता है। ये अनियंत अवस्था में है वह जो है देवदत्त, तो देवदत्त करता है करोति का। अब जो है नियंत अवस्था में करोति कार्यति बन जाएगा, तो कार्यति कटम देवदत्तम, देवदत्त से चटाई बनवाता है। देवदत्त से चटाई बनवाता है तो कार्यति कटम देवदत्तम और कार्यति कटम देवदत्तेन, ये दोनों हो गया। समझ गया जी, सभी को समझ में आ गया?
आ गया आचार्य जी।
अनंत जी समझे
जी?
कोई शंका तो नहीं है किसी को?
नहीं आचार्य जी।
चलिए जी, तो ये हमने कर्म का पढ़ा दिया, अब कर्ता चलते हैं। कर्ता उसी के आगे है स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र अकारांत पुंलिंग स्वतंत्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और कर्ता अकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब जो है कार्के की मृत्यु आ रही है तो क्या हो गया?
कर्ता में कर्तृ है
कर्तृकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। कार्के मने क्रियाया सिद्धौ, कार्के का मतलब हुआ क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में यह स्वतंत्र सह कर्ता भवति। क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र सब कर्ता होते, क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है उसका नाम करता है। जैसे देवदत्त कटम करोति, यहाँ पर बनाने क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र कौन है? देवदत्त कटम करोति, यहाँ पर बनाना जो चटाई बनाना क्रिया है इसमें स्वतंत्र कौन है? इस क्रिया की सिद्धि में, बनाने क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र कौन है?
देवदत्त
है ना जी?
जी।
तो इसलिए देवदत्त कर्ता हो गया। जैसे देवदत्त पचती, देवदत्त पचती, तो देवदत्ता पचति तो पकाना क्रिया है, पकाना क्रिया, पकाने क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र कौन है?
देवदत्त।
देवदत्त स्वतंत्र, उसका अपना वह प्रधान है, उसकी प्रधानता है, तो वह स्वतंत्र जो है वह देवदत्त है। माने स्वतंत्रम यस्य, जिसका अपना तंत्र है वह स्वतंत्र होता है, जिसका अपना सिद्धांत होता है वह स्वतंत्र होता है। तो अब इस पर जो है देवदत्त पचति देवदत्त कटम करोति, यहां तो समझ में आ रहा है, परंतु एक वाक्य है जैसे अशी छिनत्ती, क्या है जी? मैंने क्या बताया बोलिए?
अशी छिनत्ती।
अशी छिनत्ती अशी छिनत्ती, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तलवार काटता है। तलवार काटता है, क्या है जी?
तलवार काटता है।
हाँ, असी छिनत्ती या असी कहते हैं कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी काटता है। ऐसे है स्थाली पचती, स्थाली पचती, तो स्थाली पचती का मतलब होता है कि स्थाली पकाता है, स्थाली माने बर्तन, स्थाली पकाता है। अब बताइए जब हम कहते हैं असी छिनत्ती कुल्हाड़ी है, असी छिनत्ती कुल्हाड़ी काटता है, तो बताइए काटने क्रिया में स्वतंत्र कुल्हाड़ी है क्या?
नहीं।
हाँ जी?
नहीं,
नहीं है। वो तो कोई काटेगा, वो अपने जड़ वस्तु है, कैसे काट देगा वो कुल्हाड़ी? ऐसे ही स्थाली पचती। अब यहाँ पर जो है बर्तन जो है बटलोई जो है वह पकाता है, तो यहाँ पर क्या पकाने क्रिया में स्वतंत्र है बटलोई?
नहीं,
नहीं है ना जी?
जी।
यदि हम इतना ही अर्थ करते हैं जितना अर्थ हमने बताया कि क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र, क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है उसका नाम करता है, जब कहते हैं तो बड़े स्थाली और असी ये करता नहीं हो सकता, परंतु वह भी करता है, स्थाली भी करता है असी भी करता है। तो इसीलिए यहां पर स्वतंत्र का अर्थ करेंगे स्वातंत्रेन विवक्षते। स्वतंत्र का क्या अर्थ करेंगे जी? स्वतंत्र का लक्षणा है स्वातंत्रेन विवक्षते, इतने अर्थ में लक्षणा है कि क्रिया की सिद्धि में क्रियाया सिद्धौ मने यह स्वतंत्र अर्थात स्वातंत्रेन विवक्षते, क्रिया के सिद्धि में जो स्वातंत्रेन विवक्षित है, क्रिया के सिद्धि में जिसको हम स्वतंत्र रूप से कहना चाहते हैं उसकी विवक्षते, माने क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र रूप से जो कहने की इच्छा की जाती है, स्वतंत्र न कहने की इच्छा की जाती है, उसका नाम उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। तो स्वातंत्र विवक्षते, तो अब स्वातंत्र विवक्षते का मतलब हुआ कि क्रिया के सिद्धि में जिसको स्वतंत्र रूप से कहना चाहता है, उस स्वतंत्र रूप से जिसको कहना गया था, तो उस स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्र का नाम करता है। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा कि आप कभी यदि कुल्हाड़ी से काटते हो कोई लकड़ी, तो कोई यदि लकड़ी इतना पैनी है, क्या बोलते हैं, इतना धार है कि मारा और कट गया, तो मानो वहां पर मानो कि मैं क्या काट रहा हूं कि मैं तो केवल माध्यम हूं, ये तो केवल कुल्हाड़ी इतना पैनी है कि कुल्हाड़ी ही उसको काट दे रहा है, हम क्या काट रहे हैं। ऐसे ही स्थाली, आजकल जैसे मान लो कि जैसे ऐसे ऐसे नए नए चीज भोजन बनाने का ये बर्तन मिलता है कि कितना क्विकली बनाया जाए, कितना क्विकली बन जाए, तो मैं क्या बनाता हूँ, बस मैंने चूल्हा पे रखा और वह बन गया, पर स्थाली ही बना दिया भोजन को, इतना वह उसमें वो इतना पतला उसके पेंदी है, पेंदे इतनी पतली है और वह उसमें ऐसा लगा हुआ है कोई धातु जो कि तुरंत अग्नि हुआ और गर्म हुआ और बन गया रोटी, बन गया चावल, भोजन बन गया। तो इसीलिए ऐसी जब विवक्षा हो कि जब सौ माने सौ करियाति से अत्यंत सरलता जब विवक्षा हो कि विवक्षा हो, तब वह जो है वह वहां पर तो वैसे असीकरण है, करण को भी कर्ता कर दिया, स्थाली वैसे अधिकरण है, स्थाली में पकाता है देवदत्त, तो वह परंतु इतना वह अपने पतला है कि जो वह अपने आप ही पका दे रहा है। तो हमारी इच्छा है यहाँ पर कहने की अधिकरण को कर्ता, तो वह अधिकरण को कर्ता कह दिया। वहां पर असी चिन्हति में हमारी इच्छा है कि करण को कर्ता कहने का, तो करण को कर्ता कह दिया। ऐसी आप मने किसी भी चीज को, कर्म को भी कर्ता बना सकते हैं, करण को भी कर्ता बना सकते हैं, संप्रदान को भी, मैंने किसी भी चीज को आप कर्ता बना सकते हैं, समझ गए जी। इसलिए इसका अर्थ हो गया क्रियाया स्वातंत्र विवक्षितो अर्थ, क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में स्वातंत्र विवक्षित अर्थ है, उसकी कर्तृ संज्ञा है, उसकी कर्तृ संज्ञा है। हम स्वतंत्रता से जिसको कहना चाहते हैं उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। तो इसलिए देवदत्त पचती में देवदत्त कर्ता हो गया और स्थाली पचती में स्थाली कर्ता हो गया। सभी को समझ में आ गया? अब एक और क्रियाया सिद्धौ स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थः, क्रिया की सिद्धि में स्वातंत्रेन जो विवक्षित अर्थ है उसकी कर्तृ संज्ञा है। क्रिया की सिद्धि में स्वातंत्रेन जो विवक्षित अर्थ है उसकी कर्तृ संज्ञा है, उसकी कर्ता संज्ञा है, समझ गए?
विवक्षित क्रियाया सिद्धौ स्वातंत्रेन
विवक्षित अर्थ, विवक्षित अर्थ,
विवक्षित
हम संधि कर दिए थे विवक्षित अर्थ, क्रिया के सिद्धि में जो स्वातंत्रेन विवक्षित अर्थ है उसकी कर्तृ संज्ञा है, उसकी कर्ता संज्ञा है। उसकी कर्तृ संज्ञा, समझ में आ गया? तो स्थाली पचती असी छिनती और देवदत्त पचती, जैसे असी छिनती और देवदत्त असिना काष्ठम छिनती, देवदत्त काष्ठम असिना छिनती, देवदत्त जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है और इतना वह पैनी है कि असी छिनती हो गया। ऐसे देवदत्त पचती परंतु मैं स्थाल्याम पचती, स्थाल्याम ओदनम पचती, और इतना सरल है कि स्थाली पचती, ये हो गया। सभी को समझ में आ गया जी?
जी।
तो अब समय हो गया है, यही रहने देते हैं, आगे का नहीं होगा, अब दूसरा पाठ होगा। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं।
मंत्र पाठ आचार्य जी।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
आचार्य जी नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते
नमस्ते।